याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19 से लेकर 27 पद तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत, क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले, जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता, वरन फलप्रद कार्य करता है, इसीलिए वह आशीष पाएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। याकूब का पत्र याकूब ने लिखा है, जो हमने पिछली बार देखा था। याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई, छोटे भाई, यहूदा के भाई। यहूदा और याकूब दोनों भाई भाई थे और प्रभु यीशु मसीह के वो भाई है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है। याकूब को जब हम देखते हैं तो हमने याकूब के पत्र से एक चीज को हम पाते हैं कि विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास करते हैं, जो विश्वास का जीवन हम जीते हैं, उस विश्वास के जीवन को सचमुच में अगर हमें समझना है तो हमें उसके लिए हम क्या कार्य करते हैं, किस रीति से उसको साबित करते हैं, हमारा जो विश्वास है उसको, वो कार्य से साबित होता है। और इस बात के ऊपर में वो जोर देता है पूरे पत्र के अंदर में, और फिर वो बताता है कि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपके जीवन के अंदर से फलप्रद कार्य दिखने चाहिए, और वो है पवित्र जीवन। जैसे यहूदा कहता है कि फलप्रद जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे जीवन के द्वारा उस कार्य को, उस विश्वास को देखना बहुत जरूरी है। और ये बात यहाँ पर याकूब भी कहता है, और खास तौर से वो विश्वास और विश्वास के कार्य के बारे में इस पत्र के अंदर में बात करता है। पिछली बार हमने देखा, दो बार वचन को सुना, याकूब उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 8 वचन तक। और उस वचन में हमने देखा कि परीक्षा का महत्व क्या है, हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसका महत्व क्या है, और वो परीक्षा जो है हमें हमारे विश्वास को मजबूत करती है। हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, परीक्षाएं आती हैं, वो परीक्षाएं हमारे विश्वास को, जो प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास किया है, जो विश्वास हम जी रहे हैं, उस विश्वास को वो मजबूत करती है। और वहां पर हम उस विश्वास के अंदर में चलते हैं तो वो हम देखने पाते हैं हमारे विश्वास को किस रीति से मजबूत करती है ये परीक्षाएं, उसको हम देखते हैं। दूसरी बात हमने देखी 9 वचन से लेकर 18 वचन तक, जो पिछली बार हम लोगों ने सुना, उसके अंदर में हमने देखा कि प्रलोभन क्या है, परीक्षा और प्रलोभन का तफावत हमने देखा, अंतर देखा। प्रलोभन क्या है? प्रलोभन परमेश्वर से नहीं आता है, प्रलोभन अपने ही इच्छा से, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की इच्छा से वो प्रलोभित होता है और प्रलोभन में वो पड़ता है। उसके ऊपर में हमने पिछली बार भी ध्यान दिया, और इस बार जब हम देख रहे हैं 19 वचन से लेकर 27 वचन तक, तो हम और आगे की बात इसके ऊपर में देखना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस खंड के अंदर में खास तौर से एक ऐसी बात को बताता है, जो मैंने उसका जो मुख्य बात यहाँ पर हम सीखना चाहते हैं वो लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, उसके वचन पर चलने वाले प्रमाणित करते हैं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, चेला हूं, तो मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, उसके वचन को मैं मानूंगा, उसकी आज्ञा को मैं मानूंगा और उस वचन पर मैं चलने वाले अपने आप को प्रमाणित करूंगा। तो ये मुख्य बात इस खंड के अंदर में हम देखना चाहेंगे। आज हम लोग केवल 3 वचन को यहाँ पर देखेंगे, बल्कि हमने काफी वचन पढ़े हैं, 27 तक हमने पढ़ा है, लेकिन 19, 20 और 21 इस वचन के ऊपर में हम थोड़ा सा जोर देना चाहेंगे और उसको हम पढ़ना चाहेंगे। जब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु का शिष्य उसके वचन पर, प्रभु जी के वचन पर चलने वाला अपने आप को प्रमाणित करता है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्या हूँ, तो मैं उसके वचन पर चलूंगा, मैं उसके वचन पर चलूंगी, ये हम देखते हैं। इसके तहत 4 बातें खास देखना चाहेंगे 19, 20 और 21 के अंदर में। प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन पर चलना या चलने वाले प्रमाणित करना, उसके लिए याकूब यहाँ पर 4 निर्देश इन वचनों के अंदर में हमें देता है। उन निर्देशों को हम जांचना चाहेंगे हमारे जीवन के लिए, और वो 4 निर्देश इसी वचन में हैं। 19 और 20 के अंदर में 3 निर्देश दिए गए हैं। तो पहला जो निर्देश है वो है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर बने। पहली बात हम देखना चाहेंगे, सुनने के लिए तत्पर, वचन को सुनने के लिए तत्पर। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे, चलने के लिए, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरजवान, ये बात भी हम देखना चाहेंगे। पहले बात जब हम देखते हैं, दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे वो है उसी वचन में, 19वें वचन में, कि क्रोध करने में धीमा। तीसरी बात, इसीलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करें। और चौथी बात 21वें वचन के अंदर में लिखी है, वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर ले। 4 बातें हम बारी बारी से देखना चाहेंगे। इसे देखने से पहले 2 आयतें और हम देखेंगे। इसके पहले 18वीं आयत, जो पिछली बार हमने गहराई से नहीं देखी थी, उसमें लिखा है याकूब 1:18, उसमें लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, जिससे हम उसके सिरजे गए प्राणियों में मानो प्रथम फल हो। और एक दूसरा वचन 22वां वचन ये कहता है, परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले, जो स्वयं को धोखा देते हैं। याकूब बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हमें समझाता है कि परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए या चलने में प्रामाणिक करने के लिए अपने आप को हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इसके पहले वो ये कहता है कि जो वचन हमने सुना है, सत्य का वचन, और जिसके द्वारा हमें जन्म दिया गया है, उस वचन के बारे में वो बताता है। और फिर 22वीं आयत में कहता है कि अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले, जो स्वयं को धोखा देते हैं। 18 आयत के अंदर में याकूब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस सुसमाचार के बारे में, उस सत्य वचन के बारे में यहाँ पर हमें सिखाते हैं। बल्कि याकूब का पत्र अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो याकूब केवल 2 बार प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करता है इस पूरे पत्र के अंदर में। वो इसीलिए भी कि यहूदी लोगों को उसने ये लिखा है, और यहूदी लोग उस समय के जो थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो केवल एक परमेश्वर पर विश्वास करते थे, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, ये त्रिएक परमेश्वर हैं, उस पर विश्वास नहीं करते थे। और वो यहूदी जो लोग हैं, वो उनमें से कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पाया, और ऐसे जो यहूदी लोग जो 12 गोत्र तितर बितर हो गए थे, उन गोत्रों के लिए याकूब इस पत्र को लिखता है। और इसीलिए उसके पत्र के अंदर में यीशु मसीह का शायद जिक्र नाम से अगर हम कहें तो केवल पहले अध्याय में पहली आयत, जिसमें वो अपने आप को कहता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब, और दूसरे अध्याय में पहली आयत और दूसरी आयत जिसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसरे के प्रति पक्षपात की भावना से न हो। ये दो जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का जिक्र करता है, लेकिन उसके पत्र में जब हम देखते हैं तो उद्धार के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के वचन के तहत हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि याकूब का पत्र कहा जाता है कि सबसे पहले लिखा गया है, जो सुसमाचार जो लिखे गए हैं उन सुसमाचारों के पहले इस पत्र को लिखा गया है, और वहां पर चर्चा यीशु मसीह की वो इस रीति से नहीं करता। लेकिन जब हम 18वीं आयत के अंदर में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है। सुसमाचार बहुत बहुत अहम है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलने के लिए हमें जो सबसे पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है उद्धार या सुसमाचार को समझना। जब तक सुसमाचार को हम नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करता हमारे जीवन में हमने नहीं स्वीकार किया है, तब तक परमेश्वर के जो वचन है वो वचन को सुनने में या तो वचन पर चलने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और इसीलिए वो ये कहता है कि सत्य के वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए, जो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम पाप में पड़े हुए थे। हम पाप में पड़े हुए थे और सही समय पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हमें अपने पापों से वो छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद में सिद्ध जीवन उन्होंने जिया। सिद्ध जीवन जीने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस के ऊपर में लटकाया गया, और क्रूस के ऊपर में लटकाया गया उस समय हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए वो बलिदान वहां पर हो रहे थे। और जब वो बलिदान हुए, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जब हम विश्वास करते हैं कि मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आए, पवित्र जीवन जिए, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने से मैं पापों का पश्चाताप करते हुए उसको स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करते हैं हम, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमें नया जन्म देते हैं। हमें उस सत्य, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, उस सत्य को जब हम समझते हैं तो हमें एक नया जन्म मिलता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर से जीवित हो गए, और वो फिर से आने वाले हैं। ये जो विश्वास है हमें एक नया बालक बनाता है, हमें एक नया जन्म देता है। और ये सुसमाचार को और गहराई से हम जानना चाहेंगे, लेकिन वहां से वो शुरुआत करता है कि वचन के ऊपर में चलने के लिए विश्वासियों को, चेलों को बुलाया गया है। और इन बातों के ऊपर में हम आते हैं 19 आयत के अंदर में, और पहली बात को हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। हमारा जो मुख्य विषय है, प्रभु यीशु का शिष्य उसके वचन पर चलने वाला अपने आप को प्रमाणित करता है, उसके तहत पहली बात 19वीं आयत के अंदर में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर हो, सुनने के लिए तत्पर हो। यहाँ पर याकूब ये कहता है कि जो बातों को मैं बताना चाहता हूँ, ये चार बात या पांच बात यहाँ पर लिखी है, इन बातों को तुम जानते हो, ये कोई नई बात नहीं है, ये बात तुमने सुनी है, ये बात को तुम जानते हो, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और याद दिलाते हुए वो कहता है पहली बात कि तुम सुनने में तत्पर, वचन को सुनने में तत्परता, ये सबसे पहली बात वचन को, वचन के ऊपर में चलने के लिए हमें मदद करती है। तो सुनना ये बहुत महत्व का यहाँ पर हमारे लिए है। रोमियो का पत्र के अंदर में पौलुस यही कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वचन को सुने। सुनना बहुत ही आवश्यक है। जब हम सुनते हैं वचन को हम सुनते हैं तो हमारा जो विश्वास है, जो विश्वास के बारे में याकूब बात करता है, वो विश्वास मजबूत होता है, वो विश्वास बढ़ता है। उसका मतलब ये कि विश्वास में जब हम बढ़ते हैं तो हमारे प्रभु जी के नजदीकता में हम आते हैं। पिछली बार हमने कहा कि एरोप्लेन दूर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन जितना जितना हम नजदीक आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर में बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसी तरह जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के नजदीकता में हम आते हैं, हमें वो नजदीक ले आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरे तीमोथियुस के अंदर में लिखा है, 15, 16 और 17 के अंदर में पौलुस तीमोथियुस को लिखता है और तीमोथियुस को ये कहता है, जवान तीमोथियुस है, तीमोथियुस को ये लिखता है 2 तीमोथियुस 3:15, 16 और 17 के अंदर में कि और बचपन ही से तेरा पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन किस चीज के लिए दिया गया है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है, और जब उसको हम सुनते हैं तो वो हमें शिक्षा देता है, ताड़ना देता है, सुधार करता है और धार्मिकता के शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उतना ही नहीं, लेकिन तीमोथियुस को पौलुस ये कहता है वहां पर कि वो हमें बुद्धिमान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। व्यवस्था विवरण के अंदर में पढ़ते हैं, मूसा जब इसराइल के लोगों को कनान देश के अंदर में जब ले जाना चाहता है या ले जा रहा है, उस बीच में मूसा उन इसराइल के लोगों को व्यवस्था पढ़ाता है, नियम के बारे में बताता है, और जब नियमों के बारे में, विधियों के बारे में वो सिखा रहा है, और जब वो सिखा रहा है तो वो ये कहता है कि तुम इन विधियों को ध्यान से सुनो और तुम्हारे जीवन में उस नियमों को तुम स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण 4:6 के अंदर में वो ये कहता है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तथा समझदारी जाति जाति के लोगों के बीच में प्रकट होगी। जब वचन को तुम सुनोगे, उसको पाओगे, बुद्धिमान बनोगे। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो वो हमें बुद्धिमान बनाता है। अगर हमें बुद्धिमान बनना है, परमेश्वर के निकटता में जाना है, विश्वास में मजबूती लाना है, तो पहली बात यहाँ पर वो कहता है कि तुम वचन के सुनने वाले बनो। भजन संहिता में भी हमने पढ़ा 19वीं आयत के अंदर में कि परमेश्वर का वचन सिद्ध, परफेक्ट है, उसको हमें सुनना चाहिए। भजन संहिता 119 के अंदर में भी परमेश्वर के वचन के बारे में हम पूरा जो अध्याय है उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन 119:98 में भजन में वे कहे कि तेरी आज्ञा मुझे बुद्धिमान बनाते, तेरे नियम मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। परमेश्वर के जब वचन हम सुनते हैं तो वो हमें बुद्धिमान बनाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर के वचन सुनने के लिए ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर हो, उसको कान लगा के सुनना। किसी ने कहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने एक मुंह दिया है लेकिन दो कान दिए हैं। बोलने में वो धीमा हो या धीरजवंत हो, लेकिन सुनने में तत्पर हो, दोनों कानों से सुने। मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने जब हम काउंसलिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो एक चित्र वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर में उन्होंने ड्रॉ किया था, वो मुझे आज भी याद है। उस चित्र के अंदर में उन्होंने एक बड़ा गोला बनाया, एक चेहरा बनाया बड़ा गोला, और उस गोले के अंदर में दो बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने वहां पर ड्रॉ की, और उसके बाद में दो बड़े बड़े कान वहां पर उस गोले के ऊपर में लगाए, और उस गोले के अंदर में एक छोटा सा मुंह बनाया, एकदम छोटा सा मुंह बनाया, और फिर कहा कि सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें बोलने से ज्यादा हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं। कई बार ये बात बहुत सही है कि हम लोग कई बार बहुत ज्यादा बोल देते हैं, बहुत ज्यादा हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कभी कभी बढ़ा चढ़ा के हमारा मुंह बोलने लगता है, और हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो उन बातों से कई बार लोग कहते हैं कि ये बड़ी बातें करता है, बड़ा मुंह चलाता है, या तो फिर जीवन में तो कुछ है नहीं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये कई बार होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, नित्य वचन पूरा भरा हुआ है उसके उस बातों से, अगर हम उसको पढ़ना चाहेंगे, नित्य वचन 10:19 में यहाँ पर लिखा है कि जहां बहुत बातें होती है वहीं अपराध भी अवश्य होता है, पर जो अपने होठों पर लगाम लगाता है वह बुद्धिमान है। और 13:3 यहाँ पर यह कहा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, पर जो व्यर्थ गाल बजाता है उसका विनाश होता है। और नीति वचन 17:28 जिसके अंदर में लिखा है कि मूर्ख भी जब वह चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है, जब वो अपने होठ बंद करता है तो ज्ञानी गिना जाता है। और आखिरी वचन 29:20 हम देखेंगे, 29:20 में लिखा है कि क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है जो बोलने में उतावली करता है, उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। और इसीलिए पहली बात यहाँ पर जब याकूब हमें लिखकर बताता है कि सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा, वचन को सुनना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु की आवाज हमें हर दिन इस भगदड़ वाली जिंदगी में, जीवन में हमें सुनना चाहिए, और इसीलिए उसकी आवाज को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम कलीसिया में बैठते हैं, पवित्र जगह से जब वचन को बोला जाता है तो हम सुनने के लिए तत्पर रहे। हमारा एक भाई है जो हमेशा हम जब सुबह का डिवोशन करते हैं या फिर बाइबल को पढ़ते हैं तो जैसे वो कुर्सी पर आते हैं सुनने के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती है, सोने लगता है ना, परमेश्वर का जैसे वचन आता है उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर उसको बार बार जगाना पड़ता है, आप क्या कहते हैं उनको, फिर हम पूछते हैं कि इसके बारे में, हाँ हाँ भैया ये है। कई बार जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो सुनने के लिए जब जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती है। कई चीजें जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने से रोकती है, और खासतौर से शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से अगर हम तैयार नहीं है और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम जब बैठते हैं तो हमें सुनने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ढूंढ निकालिए कि कौन सी ऐसी बातें जो आपको रुकावट आपके अंदर में लाती है, क्या आप थके हुए हैं, क्या आपके अगल बगल में कोई आवाज आ रही है। इसलिए हमारे कलीसिया में हम कहते हैं ना कि अपने फोन को स्विच ऑफ करो, कि जैसे ही वचन बोला जाता है और कोई अच्छा बाजा बज जाता है तो सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और जो पॉइंट कहना चाहते हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो कई ऐसी जो बातें जो हमें विचलित करती है या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें दूर करती है, उन बातों को हमें हटाना है, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से, तत्परता से हमें सुनना है। तो पहली बात ये निर्देश वो कहता है कि वचन को लागू करना है जीवन में, तो पहली बात हमें करना है कि उसको हम सुने और कम बोले। दूसरी बात जो यहां पर 19वीं आयत और 20वीं आयत के अंदर में ही लिखी है कि क्रोध करने में धीमा, परमेश्वर के वचन को या उस वचन के तहत आप चलना चाहते हैं और चलने वाले प्रमाणित करना चाहते हैं तो दूसरी बात याद रखनी है कि आप क्रोध करने में धीमा हो।
यहां पर यह नहीं लिखा कि क्रोध मत करो, लेकिन क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध एक भावना है हमारे अंदर के अंदर में, जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं कई चीजों से तो हम हंसते हैं, दूसरों से हम खुशियां बांटते हैं, जो खुशी का खुशी की जो भावना हमारे अंदर में आती है उसको हम हंसते हुए प्रकट करते हैं, या हम बहुत दुखित हो जाते हैं कोई बात को लेकर तो हम रोने लगते हैं, रोने की भावना दुख की भावना हमारे अंदर में रहती है। वैसे ही क्रोध एक भावना है और वो भावना हमारे अंदर में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि क्रोध करने में धीमा। प्रभु का वचन ये भी कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रोध नहीं है या क्रोध हम नहीं करेंगे, अगर क्रोध नहीं है तो हमारे अंदर की भावना चली जाती है, लेकिन उसको काबू में रखना ये बहुत महत्व की बात वो करता है। वो इसीलिए कहता है यहाँ पर 20वीं आयत में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं करता। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता के पास में पहुंचने के लिए या परमेश्वर के जैसे बनने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए हम अगर क्रोधित होते हैं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। क्रोध करने का मतलब ये भी होता है कि बहुत जोर से हम चिल्लाते हैं, कोई बात को लेकर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं और हमारे मुंह से अनाप शनाप शब्द निकलने लगते हैं। क्रोधित जब व्यक्ति होता है, हमारे अंदर की जो भावना है उस भावना को हम बाहर में लाते हैं, उसको हम कहते हैं कि क्रोध करना। हर एक शिक्षक होता है वो कई बार अपने विद्यार्थी के ऊपर में क्रोधित होता है ना। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत धीमा सीखने वाले होते हैं, जिसको स्लो लर्नर्स कहते हैं। और मैं ज़्यादातर देहातों में कलीसिया का काम करता हूँ और वहाँ पर जब टीचिंग करते हैं तो लोगों को वहाँ पर एक ही वचन को बार बार समझाने से भी वो समझ में नहीं आता और कई चीज़ों को उनको बार बार कहना पड़ता है, दोहराना पड़ता है और बहुत धीरे से सीखते हैं। और उस समय में शिक्षक अपने विद्यार्थी के ऊपर में अगर क्रोधित हो जाता है और उनको अनाप शनाप बोल देता है, तुम्हारे अंदर में बुद्धि नहीं है, तुम समझते नहीं हो, तुम क्या पढ़ोगे, कैसे समझाएंगे। और अगर हम इस रीति से क्रोधित होकर उन विद्यार्थियों को बोलने लगेंगे तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हम नहीं पाएंगे। वो विद्यार्थी बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और फिर हम कई बार कई महीनों तक उनको बाहर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब एक शिक्षक है तो शिक्षक को उस रीति से क्रोधित नहीं होना है, लेकिन समझ के साथ में लोगों को समझाना है। उसी तरह माता पिता अपने बच्चों के ऊपर में कई बार क्रोधित हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में इन दिनों में उसका अनुभव कर रहा हूँ, बच्चों के साथ में क्रोधित होना। जितना हम क्रोधित होंगे उतना बच्चे हट्टी बनते जाएंगे, वो समझेंगे नहीं जो हम समझाना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को जब हम प्यार से समझाते हैं, उन्हीं बच्चों को हम समझदारी से समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे और उसमें से बाहर आएंगे। बच्चों के ऊपर में क्रोधित होना, कई बार पति पत्नी एक दूसरे के साथ में लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, शब्द की आप ले कर लेते हैं। क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के पास में जब हम जाते हैं तो याकूब ये कहता है कि तुम्हें मालूम है लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस क्रोध में धीमा बनो, क्रोध ना करो, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं करने पाएगा। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारा जो क्रोध है वो क्या करता है, हम लोग दूसरों का जो भरोसा है उसको हम खो देते हैं, है ना। लोग हमको उसी नजर से देखते हैं, हम आत्मसंयम को खोते हैं हमारे अंदर से। क्रोध जब आता है तो आत्मसंयम जो रखनी है उसको हम खोते हैं, वो भी एक पाप है। ईमानदारी को खोते हैं, क्योंकि झूठ भी बोल देते हैं क्रोध के अंदर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब क्रोधित होते हैं तो मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं ये साबित करना चाहता हूँ, जोर से बोलकर मेरी बात को मैं यहाँ पर सच्ची साबित करना चाहता हूँ। हम ये करते हैं, क्रोध हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, पवित्र परमेश्वर से दूर ले जाता है। और इसीलिए याकूब ये कहता है कि क्रोध करने में धीमा, क्रोध स्वार्थी पन दिखाता है। क्रोध करने से ये होता है कि मैं भरोसा अपने आप पर रखता हूँ, स्वार्थी बनता हूँ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलना चाहते हैं, उसके माफिक तुम अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, तो ये दूसरी बात याकूब कहता है कि क्रोध करने में धीमा हो। हम अपने आप को भी जांचेंगे कि मैं कितना क्रोधित हूँ मेरे जीवन में। सबके सामने मैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अकेले में, परिवार में, बाहर में, कई बार वो क्रोध हम निकालते हैं और परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर की पवित्रता से हम दूर हो जाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर 21वीं आयत के अंदर में यहाँ पर लिखी है, इसीलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करो। परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलना है, उसके तहत अपने आप को प्रमाणित करना है, तो ये तीसरी बात वो कहता है कि सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता जो तुम्हारे अंदर में है उसको तुम दूर करो। ये शब्द यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ग्रीक के अंदर में, और मलिनता जो शब्द है वो जो कान है, हमारे कान के अंदर में जो मेल है या मोम होती है, उस मोम के बारे में बताता है कि उस कान का जो मेल है, मोम है, उसको दूर करो। क्या होता है कि कान के अंदर में है, जब मोम बढ़ती जाती है धीरे धीरे, उसको जब हम साफ नहीं करते हैं और मोम बढ़ती जाती है तो कान भर जाता है और सुनने में तकलीफ होने लगती है और हम बहरे हो जाते हैं, सुनने नहीं पाते। याकूब यहाँ कहता है कि उस मोम को निकालो, क्योंकि बहरापन एक ऐसा चीज होता है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपको रोकता है। और ऐसी जो चीजें, यानी कि आत्मिक तौर से कई ऐसी चीजें जो हमारे अंदर में है, जिसको निकालने के लिए कहता है कि ऐसी चीजों को निकालो, सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को तुम निकालो। आत्मिक तौर पर अगर ऐसे पाप हमारे जीवन के अंदर में हैं जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रुकावट पैदा करते हैं, ऐसे पापों को हमें निकालने के लिए, दूर करने के लिए वो यहाँ पर कहता है। पौलुस बहुत अच्छा लिखता है, आइए हम उस लिस्ट को हम पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय, पौलुस इसके अंदर में लिखता है 4 अध्याय 22 पद से लेकर 32 पद तक, परमेश्वर का शिष्य परमेश्वर के वचन के तहत चलना चाहता है, तो ये तीसरी बात याकूब यहाँ पर लिखता है। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे इस वचन को, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिर्जा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप न करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर न दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों के परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब प्रकार के भेदभाव सहित तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। याकूब वही कहता है कि सारी मलिनता और सारी दुष्टता को दूर करो, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर में आपको चलना है, इसके तहत आपको करना है, तो आपको इन बातों को अपने जीवन से बाहर निकाल करना है, क्योंकि ये रुकावटें पैदा करती हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुराना सब जाता रहा, देखो सब नया हो गया है। ये बात प्रभु जी हमें इस वचन के जरिए कहना चाहते हैं कि हम ऐसे बने, परमेश्वर के वचन के ऊपर में हमें चलना है तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और इन बातों को हमें धीरे 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 निकालना है। कई बार ये होता है कि उद्धार पाने के बाद में हमको वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम जा रहे हैं प्रभु के दरबार में, स्वर्ग में हम जा रहे हैं, ये वचन हमको दिया गया है, हमारे पापों की क्षमा हुई है और हम बैठे हैं, लेकिन उसी जगह पर हम बैठे रहते हैं, हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उद्धार के बाद में अभी हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया गया, और इसीलिए इन सारी मलिनताओं को, दुष्टताओं को हमें छोड़ना है। जब हम इन बातों को छोड़ते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, चौथी बात 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सके। चौथी बात, वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो, वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। परमेश्वर का वचन हम में बोया गया, जिस दिन हमने पश्चाताप किया, अपने पापों की कुबूलात करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमने विश्वास किया, नया जन्म पाया, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम में बोया गया। उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन बार 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 परमेश्वर के दासों के जरिए, हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उसके जरिए हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हमारे जीवन के अंदर में वो बोया जाता है। वचन को बोने वाले का जो दृष्टांत है उसको हम देखते हैं ना, कि चार किस्म के वचन, चार किस्म की जमीन है, और उसके बारे में हम देखते हैं कि वचन को बोया जाता है, पहली जमीन, दूसरी जमीन, तीसरी जमीन ना, उसको वचन को स्वीकार करती है, और स्वीकार करने के बाद में वो बढ़ती नहीं है, फल नहीं लाती। लेकिन चौथी जो जमीन है बोने वाले के दृष्टांत के अंदर में, वो फल लाती है। हमको बार बार देखना होगा कि हमारे अंदर में वचन जो बोया गया है, क्या वो वचन फल ला रहा है। वचन तो बोया जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन सुनने वाला जो है उसको भी कुछ करना है। जमीन के ऊपर में वचन बीज बोए जाते हैं, लेकिन जब तक जमीन उस वचन को, उस बीज को खींचती नहीं है, पानी नहीं देती है, उसको पोसती नहीं है, तब तक जो बोया हुआ बीज वहां पर फलता नहीं है। उसी तरह वचन हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में बार बार बोए जाते हैं, हमें कहा जाता है, जिसको हम सुनते हैं, लेकिन जब तक हम तैयार नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तब तक हमारे जीवन में वो वचन फल नहीं लाए। वही जो चौथी बात यहाँ पर याकूब कहता है कि वचन के तहत जीवन जीना है तुम्हें, वचन के तहत अगर चलना है तो ये चौथी बात, वचन पर चलने के लिए वचन को ग्रहण कर, जो है ऐसा स्वभाव बनाओ कि ये वचन मेरे लिए प्रभु ने दिया है, मुझे नया जन्म दिया है, मैं अब इस संसार का रहने वाला नहीं हूँ, मैं प्रभु के राज्य का रहने वाला हूँ या रहने वाले हूँ, और अब मेरा जीवन इस किस्म से जा रहा है, प्रभु जिस वचन से मुझसे बात करता है वो वचन मेरे जीवन के अंदर में जब आता है तो मैं उसे ग्रहण करूं। मैं उसे स्वीकार करूं, मैं उस वचन को समझने के लिए अपना समय दूं, मैं नम्रता से उस वचन को ग्रहण करूं। अगर प्रभु कहता है वो मुझे शिक्षा दे रहा है तो मैं उससे शिक्षा पाऊं, अगर वो मुझे वहां पर टोकता है तो मैं जानूं कि प्रभु आपका वचन ये कह रहा है मुझे सुधार के लिए, धार्मिकता के अंदर में बढ़ने के लिए। तो किस रीति से उस वचन को हम जो हमारे अंदर में बोया गया है उसको ग्रहण कर। याकूब कहता है कि 22वीं आयत में जो हमने पढ़ा, आप वचन पर चलने वाले अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं तो इन चार बातों के ऊपर में ध्यान दीजिए। वचन को सुनने में तत्पर बनिए, वचन को सुनने में तत्पर बनिए, बाधाएं जो आती है उन बाधाओं को दूर करके वचन को सुने, कलीसिया में आकर वचन को सुने। जब हम पढ़ते हैं वचन घर में तब भी हम सुनते हैं वचन को, वचन को हम सुने बार बार अलग अलग तरीके से प्रभु उन वचनों को हमारे अंदर में डालता है। वचन को सुनने के लिए दोनों कानों को हम खुला रखे, तत्पर रहे, सुनने के लिए हम बैठे। परमेश्वर की आवाज को सुनना इस भगदड़ वाली जीवन के अंदर में बहुत मुश्किल है। मेरे घर में जब भी मैं बाहर से आता हूँ अपने कार से तो मैं इस हॉर्न देता हूँ ताकि दरवाजा जल्दी आकर खोले। घर में जितने भी लोग हैं चारों लोग उस आवाज को सुन लेते हैं कि जैसे ही कार आई तो आवाज आती है पीप पीप। दूर से जब आवाज करते हैं तो उनको मालूम हो गया कि पापा आ रहे हैं या हम आ रहे हैं घर में, और वो जल्दी से आकर गेट को खोल देते हैं। उस रास्ते से बहुत सारी गाड़ियां जाती है, मोटरसाइकिल जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, ट्रक जाती है, सब आवाज करते हुए जाती है। लेकिन इस बीच में भगदड़ के अंदर में बहुत सारी आवाज है जिसके अंदर में है, उस आवाज के अंदर में इस गाड़ी की आवाज को सुन लेते हैं घर वाले और वो जल्दी आकर दरवाजा खोलते हैं। मुझे उनको खटखटाना नहीं पड़ता है, उनको मालूम है कि दूर से गाड़ी आ रही है, दरवाजा खोल। अलग अलग किस्म की आवाजें हमारे कान में आती है, लेकिन प्रभु की आवाज कैसी है उसको हमें सुनना है। पहली बात याकूब यहाँ कहता है कि सुनने में तत्पर रहो। जब तक आप सुनते नहीं रहोगे प्रभु की आवाज को पहचानते नहीं रहोगे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। और परमेश्वर का वचन सुनना बहुत बहुत आवश्यक है ताकि हम उसकी आवाज को पहचान। एक बार दो बार पढ़ने के बाद में एक महीने के बाद और पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब बार बार हम सुनते हैं तब हम पहचानने लगते हैं मेरे प्रभु की आवाज है। तो पहली बात हमें सुनने में तत्पर होना है, परमेश्वर के वचन को सुनने में तत्परता हमें दिखानी है। दूसरी बात जो हम लोगों ने यहां पर देखी वह है कि क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर पवित्र है और हमें बचना है। तीसरी बात, सारी मलिनता और दुष्टता को दूर करें ताकि उसके वचन पर चलने पाए। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। सुना तो है हमने, दुष्टता को दूर तो की है हमने, लेकिन अब उस वचन को ग्रहण करना भी हमें सीखना है, अंदर में लेना भी सीखना। बीज जमीन के ऊपर में गिरता है तो वो अपने आप नहीं फूलता है जब तक जमीन उसको स्वीकार नहीं करती, ग्रहण नहीं करती। वैसे ही हमें अपने हृदय को उस वचन को हमारे अंदर में ग्रहण। जब ये बातों को हम करते हैं तब वो कहता है कि अब अपने आप को उन वचन के ऊपर में चलने वाले प्रमाणित करो। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम आपके वचन को सुने और उसको ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना।